तक हमने सबक का जितना हिस्सा किया है, हमें उसमें यहूद के दो रवैये दिखे, जैसा कि बात हुई थी शुरू में भी, कि इस हिस्से में हम यहूद के तीन मुख्तलिफ रवैये देखेंगे अल्लाह की आयतों के मुकाबले में। इन शॉर्ट बात को कर ले अगर जितनी बात हुई है, तो शुरू में चार गिरोहों का तذکرہ हुआ, मुसलमान, यहूदी, नसरानी, साबई। अल्लाह ताला ने इन चार गिरोहों के जरिए से हम सबको बता दिया कि नामों से कुछ भी नहीं होता जब तक के अल्लाह पर ईमान, यौम आखिर पर ईमान और अमल सालेह ना किया, और अमल सालेह के अंदर रसूल की इत्तबा थी। फिर इसके बाद हमने आयत 63 में अहद की बात की कि अल्लाह ने यहूद से एक अहद लिया था। वो कौन सा अहद था? यहूद मदीना के आबाओ अजदाद से, उनके फोर फादर से लिया गया था। लेकिन चूंकि वो इन बातों पे खुश थे, यानी आप उन बातों को बुरा नहीं समझते थे जो उन्होंने की थी, तो अल्लाह ताला ने कुम का लफ्ज़ कहकर उनको भी इसमें शामिल कर लिया। फिर जब तौरात उनके ऊपर पेश की गई, उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया कि ये बड़ी मुश्किल है, तो कोहे तूर उनके सरों पे मुअल्लक किया गया। इसको देखकर वो सजदे में गिर गए। थोड़े अरसे के बाद फिर नाफरमानियाँ करने लगे। तो गोया के पहला रवैया कि कोहे तूर वाले वाक्य से पता चला अहद शिकनी का। लिख ले, जब किसी कौम को अल्लाह ताला अपनी किताब दे और उस किताब के ऊपर अमल करने की बजाय वो मनमानियां करे, तो अल्लाह को गुस्सा आता है। फिर उसके बाद अगला वाक्य हमने देखा असाबे सब्त का, जिसमें बंदर बनाए गए, हीला साजी और बहाना, ये दूसरा रवैया था। अब हम जो वाक्य पढ़ने लगे हैं, सबसे मशहूर वाक्य, गालिबन इसी वाक्य की बुनियाद पर इस सूरत को सूरत अल बकरा कहते हैं, और यहाँ आप तीसरा रवैया देखेंगे हुज्जतबाजी का। अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम, उसका फ़र्ज़ क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी काम का हुक्म दे, कर लो, समय ना व अताना, यू वॉन्ट टू डू दिस, यस आई एम रेडी। ये क्या है? इय्याका नाबुदु, बंदगी तो यही है कि जो कोई कहे वो कर लो। लेकिन जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है ना, तो उनका हाल यही होता है कि वो अल्लाह की किताबों और नबी की बातों को सुनकर या तो इनकार कर देती हैं, या फिर हीलेबाजियां, बहाने आज के दौर में मुश्किल हैं, मेरे लिए मुमकिन नहीं, ये है वो है। ये दोनों रवैये अल्लाह के गज़ब को भड़काते हैं, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। पता क्या चला कि जब बंदे पर कोई मुश्किल आती है, कोई आजमाइश आती है, कोई तकलीफ़ आती है, और वो फिर भी उसमें अल्लाह की तरफ रजू नहीं करता, तो अल्लाह ताला उस बंदे को फिर खूब लंबी मार मारता है। अब हम तीसरा वाक्या देखेंगे कि सीधा साधा एक हुक्म था, अल्लाह ताला ने इनको दिया, लेकिन ये करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? अभी आयतों के साथ बताती हूँ, लेकिन हम सिर्फ अपने मुहासबे के लिए जुमले सुन लें कि जब किताब या कुरान और सुन्नत में से कोई बात मेरे सामने आती है, तो उसको सुनने के बाद क्या मैं अहद शिकनी करती हूँ, कोई बहाने साजी करती हूँ, या फिर हुज्जतें निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा सवाल करना ताकि उस काम पे अमल करने से बच जाएं। किस तरह था ये वाक्या? आइए इसको देखते हैं। और ये वाक्या तौरात के कहते हैं कि नज़ूल होने से पहले का वाक्या है। यहाँ से आपको एक और भी छोटा सा अंदाज़ा इशारा मिलेगा, और वो क्या कि तौरात और इंजील की वो बातें जो अल्लाह की तरफ से उतारी गई थी, वो आज कुरान पाक में आ गई। यानी इस वक्त जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं ना, ये इनकी किताबों में भी थे, लेकिन आज की तौरात और इंजील को देखेंगे तो वो इतने बदल चुके हैं, कुछ तो पूरे के पूरे उन्होंने निकाल दिए। तो गोया के अगर ऑथेंटिक तरीका है कोई इल्म हासिल करने का, तो वो कुरान पाक है। वाक्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन शुरू करते हैं आयत नंबर 67 से। वइस काल मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, वही अंदाज है उस्कुरू वाला, याद करो, शोस टाइम, यानी एक वक्त गुजरा। मूसा ने कहा, मूसा कौन है? बनी इसराइल के सबसे ज्यादा मशहूर पैगंबर, और भी नबी आए थे, नोट करें। क्या वजह थी इनकी शोहरत की? दुनियावी हीरो इसलिए थे कि इनके अहद में बनी इसराइल फिरौन से निजात पा गए। जैसे हमारे जहन में कायदे आजम का नाम आ जाता है पाकिस्तान की तारीख के साथ ही, तो इधर बनी इसराइल के साथ मूसा की शोहरत हो गई, और दूसरी इनकी वजह शोहरत तौरात थी। अल्लाह ताला ने किताब को, तौरात को अपने वक्त में हिदायत और रोशनी बनाया। सूरत मायदा में उसमें बहुत डिटेल से बात होगी। तो अल्लाह ने इन मूसा को दिया, मूसा ने कौम से कहा, इन अल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है क्या अन तज़बहू बकरतन के गाय ज़िबा कर दो। सवाल पैदा होता है कि ये हुक्म कैसे दिया मूसा को अल्लाह ने, वही के ज़रिए। क्या आज अल्लाह ने हमें भी कोई हुक्म दिया हुआ? 1,000 हुक्म है कुरान पाक में। बाज़ तो कहते हैं कि सिर्फ सूरत बकरा में 1,000 हुक्म है, ठीक है। तो अल्लाह का किसी कौम को हुक्म देना नबी के ज़रिए से हो, किताब में हो, नबी के ज़ुबान से हदीस की सूरत में हो, सब बातें अमल के काबिल होती हैं। सवाल पैदा होता है कि ये हुक्म क्यों दिया? 3 वजूहात नोट कीजिए, उंगलियों पर लिख के नोट करें कि गाय को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया। पहली वजह क्या थी? फिर आ जाइए मेरे बाएं हाथ की तरफ। जब मिस्री जहाँ बनी इसराइल मिस्रियों में रहते थे, कौन सा दौर था उनका? गुलामी का। मिस्रियों के साथ वो एक लंबा अरसा रहे और मिस्री लोग गाय की पूजा करते थे, काउ वर्शिप थी। बनी इसराइल के दिल में उनके साथ रहते रहते गाय की ताजीम दिल में आ चुकी थी। ये बिल्कुल ऐसे जिसको हम माहौल का असर कहेंगे। किसी मुल्क में रहें तो अगर बाकी लोग उस झंडे की इज्जत करते हैं तो आप भी करते हैं, तो एक किस्म की वो एक चीज़ दिल में बैठ जाती। यानी एक तो वजह ये थी कि इनके दिलों में गाय की मोहब्बत थी, और अल्लाह ताला तो नहीं चाहता। अल्लाह जिस तरह बंदे के एक्शंस को शिर्क से पाक करता है, इस तरह उसके दिल को पाक करता है। तो गोया कि इनके दिल से गाय की मोहब्बत ज़िबा करनी थी। गोया कि जब किसी चीज़ को आप ज़िबा कर देते हैं ना, तो उसकी मोहब्बत भी ज़िबा हो जाती है। हम इस पर बाद में बात करेंगे। एक वजह यह थी, ठीक है। दूसरी वजह क्या थी कि बनी इसराइल में जब बिगाड़ आया, तो वक्त के साथ साथ इन लोगों के ख्यालात में ये बात आ गई कि अल्लाह मारने के बाद जिंदा नहीं करेगा। पीछे बात की ना कि अकीदे आखरत इनका बिगड़ चुका था, डिस्टॉर्ट हो चुका था। कहते थे ये कैसे मुमकिन है कि कोई मर जाए और उसके बाद उसको जिंदा किया जाए। अल्लाह सुबहाना ताला इनके इस अकीदे की इसलाह फरमाना चाहते थे। तीसरी एक वजह क्या थी कि एक कत्ल हो गया। अब ये वजह कत्ल की हम अगले सबक में पढ़ेंगे। एक आखिरी आयत जो इस लेसन की है, इस लेसन से आगे इस वाक्य की आखिरी आयत है। लेकिन वो क्या थी वजह कि एक शख्स का कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था। कहते हैं कि एक भतीजा था, चचा की जायदाद लेने के लिए चचा को उसने ज़िबा कर दिया। क्योंकि उस दौर में यही था कि जब अपनी औलाद नहीं होती तो फिर भाई के बच्चों को जायदाद मिल जाती है। तो वो भतीजा सब्र ना कर सका और वही बात के एक ही दफ़ा मुर्गी को ज़िबा करूं ताकि सारे सोने के अंडे उसके पेट से निकाल लूं। कहावत आपने सुनी होगी, और ना रही मुर्गी और ना रहे सोने के अंडे। कत्ल किया। अब कत्ल करके चचा की लाश किसी दूसरे के घर के आगे छोड़ आया और बाद में रोता धोता लोगों के पास आ गया। हाय लोगों, मेरा मर गया चचा, मर गया, दिस एंड दैट। यानी था वो झूठा। तो अल्लाह ताला एक निशानी दिखाकर इनको उस कातिल का पता देना चाहते थे। तब देखिए कि एक वाक्य के 3 डिफरेंट रीजंस, सबबे नजूल कह लें उस हुक्म के। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहान ताला नबियों के ज़रिए कल और आज के दौर में दीनदारों के ज़रिए मुआशरे के अंदर फैले हुए इस तनाव को दूर करना चाहता है। किसी भी जगह आप देखिए, कत्ल हो जाए तो कितना बड़ा इशू बन जाता है, अखबारें, खबरें, रेडियो, टीवी। जब कातिलों का पता चल जाए तो सुकून आता है ना। अच्छा, अब ये चीज़ अल्लाह दिखाना चाहते थे कि अगर सीधा साधा अल्लाह का हुक्म मानते हो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये गाय को ज़िबह करना नहीं चाहते थे, दिल में तो मोहब्बत बैठी हुई थी बछड़े की, तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के मुँह से या मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये बातें सुनकर कि गाय को ज़िबह करो, सीधा सा क्या था, कोई एक छोटी सी गाय लेते और उसको ज़िबह कर देते। करना चाहते नहीं थे क्योंकि मोहब्बतों पर छुरी फेरनी बड़ी मुश्किल है। नमाज़ें पढ़नी बहुत आसान है, रोज़े रखने भी बहुत आसान है, 100 नफिल पढ़ना भी आसान है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में मनपसंद चीज़ को ज़िबह करना बहुत मुश्किल है। हम सब में से हर एक अपने उस बछड़े को ढूंढे। सारा कुरान भी पढ़ लेते हैं, बाज़ दफ़ा पढ़ा भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा मदद करते हुए कई साल गुजरते हैं, कोई एक बछड़ा गाय का दिल में बंधा होता है, उसको नहीं छोड़ते। हम सब ने अपना ढूंढना है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इब्लीस सिर्फ एक सजदे के इनकार से जन्नत से महरूम कर दिया गया था। हो सकता है हम पूरी शरीयत पे अमल करते रहे लेकिन कोई एक अमल छोड़ दें और पकड़े जाए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपके दौर में एक शख्स मैदाने जंग में आपके साथ जंग में गया, जिहाद में गया, शहीद हुआ, लड़ा, यानी लोगों के सामने गया और लड़ा और भरा। तो लोगों ने कहा कि जब उसकी जान निकली तो जैसे लोगों को आदत होती है ना फतवे देने की और इशारे करने की, तो उसने क्या कर, लोगों ने कहने लगे किसी ने जिंदा शहीद को देखना है तो उसको देख ले, जन्नती को देखना है तो उसको देख ले। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसने एक चादर माले गनीमत में से चुराई थी, यदि मुसलमानों के इज्तमाही माल में से कुछ पैसा चुरा लिया था और आज वो इसके ऊपर आग की बना के उड़ा दी गई है। इतना बारीक बीन रब है, मैं और आप नहीं बच सकते, सिर्फ उसकी रहमत से बचेंगे। ये एहसास पैदा करना है कि बाद जब हम बहुत नेक हो जाते हैं फिर और ही तकब्बुर आ जाता है कि अब तो हम नेक ही बड़े हो गए, अब तो दूसरों का भी सर खाते रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये दिखा दिया कि तुम्हारे आपको बिच गाय को पूछ तो नहीं रहे थे ना, लेकिन दिल की मोहब्बत बिल आखिर उस गुनाह के करीब ले जाती है। मैं सिर्फ बात को आपके लिए आसान करने के लिए इशारतन इसके मरकजी ख्याल में ये बात रख दूं कि आज हम मुसलमान भी गाय की मोहब्बत ना भी रखें पेगन कल्चर से, लेकिन हम कई रसूमात की मोहब्बत रखते, जिसमें पीला जोड़ा भी है, जिसमें उपटन भी है, मेहंदियाँ भी हैं, जिसमें गोद भराई भी है, दुल्हन के आने पे सरसों का तेल चौखट पे डालना भी है, और इस तरह की कई बेहुदा रस्में भी हैं कि जिसमें जवान देवर और बहनोई जो हैं वो नामहरम भाभी या साली के साथ बातचीत करते हैं। देखिए हम कर रहे हैं तो क्या अल्लाह उस पर छोड़ देगा, इनके तो सिर्फ दिल में गाय की मोहब्बत थी। बात वाजे, यानी आप कोई ऐसी मुशरिकाना रस्म करते हैं कि नहीं करते, इट्स अ अदर स्टोरी, अल्लाह दिल में उसकी मोहब्बत भी नहीं चाहता। अल्लाह बहुत गयूर है, जैसे हम नहीं चाहते ना कि कोई हमसे प्यार करता है तो ऊपर से करे और दिल में ना करे, या हमसे भी कर रहा है तो अंदर खाते किसी और से भी ऐसा प्यार करे कि जो हमारी जड़ों में पानी डाल दे, तो अल्लाह तो इससे बहुत बेनियाज है। अल्लाह ताला चाहते थे कि ये गर्दन पे छुरी फेरे गाय की और इनके दिल से उस फरसूदा कल्चर पे छुरी पड़ जाए, अब ये करना नहीं चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़िबा कर दो, ख़त्म हो गई बात। काला, अब कहने लगे कालू अतत्तखिज़ुना खुजुवा, क्या आप हमसे मजाक करते हो। नोट करिएगा क्या बात, इनको मूसा ने भला मजाक अली की, यहाँ मजाक के जुमले से पता चल रहा है कि वो जिसको हम अपना खुदा समझते हैं तुम कहते हो उसको ज़िबा कर दें। जब बंदा किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बना लेता है ना, तो जब कोई दूसरा बंदा कहे ना कि तुम इसके बगैर भी रह लो, तो लोग ऐसे ही जुमले बोलते हैं। शायद आपको ये जुमला इस तरह ना समझ आए जब तक कि मैं आपको इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल मिसालें ना दे दूं। मिसाल है कि मैं आपसे कहूं कि आज के दौर में भी घर में टीवी और इस तरह के डिफरेंट चैनल्स लिए बगैर गुजारा हो सकता है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने टीवी ज़रा निकाल दें ताकि आपका घर का माहौल पुरसकून हो। यदि अगर सिर्फ आपको, माशाल्लाह इस हॉल में बैठी सिस्टर्स को ही कह दूँ ना, मैं नहीं कह रही टीवी का इस्तेमाल बुरा, हमने तो खुद रखे हुए हैं आपके लिए, लेकिन मैं सिर्फ स्क्रीनों की बात नहीं कर रही, मैं उन चैनल्स की बात कर रही हूँ और जादू की बुढ़ियाओं की बात कर रही हूँ जो हम अपने बच्चों के लिए घरों में रखते हैं, फिर गम बड़ा रहता है कि अब बच्चे घर में अकेले हैं तो क्या देख रहे होंगे, और क्या क्या अजीबो गरीब चैनल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, और हमारे अपने मुसलमानों के चैनल्स इस तरह के अब नहीं रहे कि बाप बेटी भी इकट्ठे देख लें। जिस तरह आज के दौर में किसी को ये कह देना कि बगैर टीवी के भी घर चलता है, तो कहेंगे आर यू किडिंग, इज इट पॉसिबल, आर यू जोकिंग। आज के दौर में भी बगैर इंश्योरेंस के काम चल सकता है, आप कहेंगे इज रियली। आज के दौर में भी बगैर सूद के काम हो सकता है। तो जब कोई चीज़ वक्त का रिवाज बन चुकी होती है ना, तो लोग उस वक्त इसी तरह से उसको हैरत से देखते हैं। यही कुछ इनका हाल था कि हम उसकी मोहब्बत में चूर बैठे हैं और तू कहता है कि उसको पूजो। अब मूसा अलैहि सलाम देखिए कि इस लफ्ज़ खुजुवन से कितने गुस्से में आते हैं। काला, कहने लगे आऊज़ु बिल्लाह अनकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि जाहिल बनूँ। सूरत अल फातिहा के बाद कुरान पाक की पहली दुआ है ये। सूरत अल फातिहा तो है, वो तो दुआ है, तो दूसरी दुआ या कह लें कि सूरत अल बकरा की पहली दुआ क्या है, ज़रा देखिए। आप कहते हैं कि ये सिर्फ इत्तफाकात है, नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं। कुरान की पहली वही इकरा बिस्मि रब्बी का, और पहली दुआ क्या है? आउज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। जहालत और इल्म का कोई मैच दिख रहा है? जहालत से पनाह मांगना पहली दुआ है, और आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देख लीजिए। दीन के तो जाहिल हैं ही सो हैं, बगैर पढ़े हम लोगों के जीने को मुश्किल करते हैं, लेकिन हम दुनियावी लिहाज से भी कोई बड़े नहीं हैं। तो जहालत से दुआ मांगिए, और आउज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। दूसरी बात देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये अंदाज बता रहा है कि मजाक करना और हंसी खेल तमाशा ये जाहिलों का काम होता है। एक लफ्ज़ होता है मजाक, लिख लीजिए मीम जाल अलिफ कौफ, कुरान वाली। मजाक एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है मजाह, मीम जा, वहाँ जाल थी यहाँ जा है, शिद्दत है, और अलिफ और हा। मजाक जायज़ नहीं है, मजाह जायज़ है। दोनों का फ़र्क इंग्लिश में बहुत अच्छा समझ आ जाता है। मजाक उड़ाना क्या है? टू मॉक एनी वन, मौकरी, फन बनाना किसी का। हाफिज साहब को किसको? हाँ वो फुलां साहब हाफिज साहब हैं, कौन है जी? एक आंख से नहीं दिखता, ये मजाक है, बिल्कुल इजाज़त नहीं। सूरत अल हुजरात में इंशाल्लाह जाएंगे, जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन मजाक क्या है? लाइट मूड, सॉफ्ट सी बात, बगैर झूठ के मजाक करना, ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि पसंदीदा है। हर वक्त दुख की पोटलियाँ बने हुए ना घर में फिरा करें, ख़ास तौर पे शोहरों के साथ। शोहरों को वो बीवियाँ अच्छी लगती हैं कि जिनकी तबीयत में मजाक हो, मजाक नहीं मजाक। घर के माहौल को लाइट रखा करें, ये जो हर वक्त स्ट्रेस और टेंशन और खौफ है, हाय मियाँ ना आ जाए, हाय मियाँ ना आ जाए, हाय मियाँ ना आ जाए, आप मियाँ को बेस्ट फ्रेंड बना लें तो ये खौफ आपकी मोहब्बत में बदल जाएगा। और हर वक्त आप भी उनके सर पे सवार ना रहें, ये करें वो ना करें, घर को लाइट रखें। इस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चर दिया था बहुत पहले, बल्कि अब नेट पे मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, जिसमें एक है कि 21 टिप्स टू बी अ वंडरफुल वाइफ या सक्सेसफुल वाइफ। तो उसमें एक टिप ये दी थी कि औरत को और बीवी को मजाक आना चाहिए, सॉफ्टली। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से भी करते थे, दूसरों से भी करते थे। एक मौके पे एक शख्स आया, आपने कहा मैं तुम्हें ऊँट दूंगा, फिर जब लेने आए तो आपने कहा मैं तुम्हें ऊँट का बच्चा दूंगा, तो उसका मूड खराब हो गया कि कल कहा ऊँट देंगे आज का बच्चा दूंगा, तो कहा कि क्या हर ऊँट ऊँट का बच्चा नहीं होता। एक बूढ़ी औरत आई, कहने लगी कि आप मैं जन्नत में जाऊंगी, आपने कहा नहीं कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, तो रो पड़ी। आपने कहा अल्लाह की बंदी तू जवान होके जाएगी, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो आप देखिए कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना दिलों पे कालस आई होती है, घर का माहौल स्ट्रेस्ड है, कोई एक ऐसी बात आप में से घर में से कोई एक कर देता है, ऐसे लगता है मुझे जैसे बादलों में से सूरज निकला है, दिल का बोझ ही खत्म हो जाता है। कभी आपको लगे घर वालों का मूड खराब है, हल्का सा मजाक करें, मजाक नहीं उड़ाना, फिर तो पता नहीं वो कुछ और ही उठा के मार देंगे, मजाक करें तो हल्की सी बात है। आज कौन सा कल्चर है जरा आप सोचिए, क्या आज हर वक्त हम अपने बच्चों को पैदा होते ही, मैं कहती हूँ सिर्फ शऊर उन बेचारे मासूमों का जो उठता है ना, तो ये जो हम कार्टून दिखाते हैं ये क्या डिस्टॉर्शन है? टांगे लंबी, पेट मोटा, खोले, और कभी आप 15-20 मिनट बैठ के खुद देखें कार्टून। बच्चों को ऐसे नहीं पालती थी मुसलमान माएँ, आपके बच्चे इंसान के बच्चे हैं, पपिट्स नहीं हैं। ये बचपन में जो दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं ना, ये फिर सारी ज़िंदगी रहती हैं। इस उम्र में तो उनकी बेस बनानी थी, गालिबन कई सालों के ये पेरेंटिंग में मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि 4 महीने का बच्चा, 6 का, 1 साल का, 2 का, उसके अंदर क्या कुछ ग्रैब करने की सलाहियत होती है। शायद 4 जुबानें बच्चा एक वक्त में सीख सकता है 1 साल की उम्र के अंदर अंदर। तो लिहाजा अपने बच्चों को संजीदगी से पालिए, संजीदा होके पालना चाहिए। ये हर वक्त जो हमारे घरों में एक ऊँ वहाँ कहीं फ़ोन कर लें तो कान पड़ी आवाज़ नहीं पड़ती, हर वक्त आप देखें घरों में आवाज़ें कौन सी उठती हैं, कहीं मजाक की तो नहीं? फन कल्चर है, बोर हो रहे। इसका नुकसान क्या होता है कि बच्चों का टेस्ट इतना बिगड़ जाता है कि जरा से बड़े हुए बोर हो रहे, वीकेंड आ गया बोर हो गए, छुट्टियां आई मम्मी अब्बू कहीं लेके नहीं, के लगता है दुनिया के सबसे जाले मम्मी अब्बू यही हैं। तो बच्चों को समझाइए कि हम इस दुनिया में फन के लिए नहीं आए, हमारा फन इबादत में है, हमारी खुशी नेकी में। तो बहरहाल ये एक इशारा देना मकसूद था, बाकी चीजें आप सोचें। قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين, आप इस दुआ को आज ही याद करना शुरू कर दें। ग्रुप्स में भी आप सुनाएंगे, लेकिन जब उसमें बुक के साथ साथ आएगी फिर तो आएगी। सिर्फ इशारा कर रही हूँ कि ये दुआ आपने याद करनी है, और याद कैसे करनी है पढ़ पढ़ के याद करनी है, उठते बैठते जाते आते करें। आप इस दुआ को देखते रहा करें, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि इसका नक्श आपके दिल पे बैठेगा और आपको याद रहेगी।